ओशो पंडित बानी प्रवचन माला मरो हे जोगी मरो प्रवचन संख्या 40।
प्यारे मित्रों, आप अपने मित्रों को बताएं कि यदि वे भी अपने व्हाट्सएप पर ओशो के प्रवचन चाहते हैं तो इस नंबर पर ओशो लिखकर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें 8295435000।
पहला प्रश्न। मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूं मगर हाथ कुछ नहीं आया। तीर्थ व्रत यात्रा सब कर चुका हूं पर निष्फल। क्या मैं ऐसे ही अकारण जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा? आनंददास, सत्संग के बिना कोई पूजा नहीं, सदगुरु के बिना कोई मंदिर का द्वार खुलेगा नहीं। पूजा तुमने की होगी बहुत, वह क्रियाकांड ही रही। पंडितों से सीखी होगी पूजा, और पंडित वे हैं जिन्हें स्वयं भी पूजा का कोई पता नहीं। शास्त्रों से सीखी होगी पूजा, शास्त्रों में शब्द है निश्चित लेकिन सत्य नहीं। तुम लाश को ढोते रहे, तुम्हारा जीवंत व्यक्तित्व से संस्पर्श नहीं हुआ। कृष्ण से मिलो तो नाच सकोगे, बुद्ध से मिलो तो ध्यान में उतर सकोगे, और कोई उपाय नहीं है। बुद्ध से तो लोग डरते, कृष्ण से भयभीत थे। कृष्ण की गीता पढ़ते, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते। मूर्ति में कोई प्राण तो नहीं है, मूर्ति निष्प्राण है। पूजा करते करते तुम भी वैसे ही निष्प्राण हो जाओगे, पत्थरों के साथ रहोगे पत्थर हो जाओ। संग साथ सोच कर करना। फिर तुम जो शब्द दोहराते रहे पूजा के नाम पर, उनमें तुम्हारे प्राण की अनुगूंज थी, तुम्हारे प्राण बोले थे। जिस ईश्वर को जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं, उस ईश्वर की तरफ जुड़े हुए हाथ सच कैसे हो सकते? वे हाथ झूठे थे, वे हाथ पाखंड थे, इसलिए पूजा व्यर्थ गई। पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, निष्प्राण पूजा व्यर्थ जाती है। किन मंदिरों में तुमने पूजा की थी, किन तीर्थों में गए? उन मंदिरों में विराजमान था कोई? वे मंदिर खाली पड़े। लोग तो मंदिरों में जाते ही जब है जब मंदिर खाली हो जाते। जब तक मंदिरों में कोई दिया जलता है तब तक लोग दूर दूर रहते, दिए से डर लगता है, लपट पकड़ सकती है। दिए के पास तो पतंगे जा सकते हैं सिर्फ, मतवाले दीवाने पागल, जो अपने को निछावर कर सके। कायर तो बाहर बाहर होते हैं जब तक दिया जलता है। जैसे ही दिया बुझा, कायरों का मंदिरों में प्रवेश हो जाता है। फिर वे खूब घंटनाद करते, आरतियां उतारते। अब कोई भय नहीं, अब भय का कोई कारण ही नहीं। जब नदी पूर पर होती, बाढ़ पर होती है, तब तो तुम निकट नहीं आते। जब सूख जाती है नदी, रेत ही रेत रह जाती, तब तुम अपनी नौका उतारते हो। फिर नौका आगे नहीं सरकती तो परेशान होते हो, फिर दोष नौका को देते हो, किसी बाढ़ में आई नदी का साथ खोजा होता तो पूजा भी हो गई होती, प्रार्थना भी हो गई होती। किसी भरे मंदिर में गए होते जहां मोहम्मद अभी जीवित हो, जहां कुरान अभी पैदा होती हो, जहां गोरख की वाणी अभी जग रही हो, जहां गोरख का अलख अभी जग रहा हो, ऐसी कोई जगह गए होते। सूने मंदिर में दीप जलाकर क्या होगा? मंदिर की पावन प्राचीरें जब फूट गईं, चंदन से निर्मित देहरियां जब टूट गईं, द्वारों पर बंधन बार सजाकर क्या होगा? सूने मंदिर में दीप जलाकर क्या होगा? जब भावों को कोई गुनने वाला न रहा, जब गीतों को कोई सुनने वाला न रहा, वीणा के टूटे तार मिलाकर क्या होगा? सूने मंदिर में दीप जलाकर क्या होगा? मंदिर है लेकिन मंदिर की सुषमा न रही, सिंहासन है सिंहासन पर प्रतिमा न रही, सूने आसन पर फूल चढ़ाकर क्या होगा? सूने मंदिर में दीप जलाकर क्या होगा? सूने आसनों पर फूल चढ़ाए तुमने, मंदिरों में जरूर गए लेकिन देर से गए। जिन्हें भी सत्य पाना हो उन्हें तो कोई जीवंत किरण का साथ खोजना होगा, उस साथ का नाम सत्संग है। सत्संग के बिना सब अकारक है। पूछते हो वर्षों से पूजा कर रहा हूं, जन्मों से कर रहे होगे, तुम्हें याद नहीं। वर्षों की तुम्हें याद है इस जन्म की, जन्मों से कर रहे होगे, लेकिन झूठी हो गई सब पूजा, सब पाठ व्यर्थ हो गए, सब समय ऐसे ही बर्बाद हुआ। कारण पूजा पूजा ही न थी। ओंठों पर शब्द थे, प्राणों में उन शब्दों के लिए सहारा ना था। विश्वास से की थी पूजा, आस्था से नहीं। हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू पूजा सीख ली थी, और मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान की विधि विधान सीख लिए थे। वे सब दूसरों ने तुम्हें दिए थे, तुम्हारी अपनी तलाश न थी। और जो खुद न खोजा जाए वह सच कभी सच नहीं हो पाता। खुद खोजने की पीड़ा से ही सच मिलता है। ऐसे ही समझो कि कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद ले ले तो बस धोखा ही धोखा है, वह मां कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मां बनने की अनिवार्य प्रक्रिया से तो वंचित रह गई। किसी के प्रेम में पड़ना था, प्रेम की किसी गहन घड़ी में गर्भाधान होता, फिर 9 महीने की पीड़ा थी, गर्भ का बोझ था, फिर बच्चे के जन्म का सारा कष्ट झेलना था, वह तपश्चर्या थी। प्रेम, पीड़ा, बच्चे के जन्म की प्रसव पीड़ा, इन सब के भीतर ही मातृत्व का जन्म होता है। तुमने सस्ता रास्ता खोजा, तुमने बच्चा उधार ले लिया, तो बच्चा मां कहेगा, पर भ्रांति में मत पड़ जाना, तुम्हारे भीतर मातृत्व का जन्म नहीं होगा, यह औपचारिकता रहेगी। ऐसी ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारे गर्भ से नहीं निकली, उधार उधार है, बासी बासी है, गोद ली हुई है, इसलिए चूक होती चली जाती। अब तुम कहते हो मगर कुछ हाथ नहीं आया, हाथ आता कैसे? और दूसरी बात, जो सच में ही पूजा करता है उसे तो फिक्र ही नहीं होती कि हाथ कुछ आया कि नहीं आया। यह फिक्र तो गलत पूजा करने वाले की ही फिक्र है। जिसे पूजा आ गई उसे सब हाथ आ गया, पूजा में ही सब हाथ आ गया। पूजा का फल पूजा से अतिरिक्त नहीं है, पूजा में ही है। प्रेम का फल प्रेम के पार नहीं, प्रेम में ही है। प्रेम या पूजा किसी और साध्य के साधन नहीं है, स्वयं अपने साध्य है। तुमने किसी को प्रेम किया, फिर क्या तुम ये कहते हो कि इतना प्रेम किया हाथ कुछ नहीं लगा? प्रेम में तो मिल गई संपदा, अब और फल क्या चाहिए? जिसने प्रेम किया उसने पा ही लिया, प्रेम में ही पा लिया। प्रेम कोई बाजार तो नहीं कि धंधा किया फिर लाभ हुआ, लाभ पीछे हुआ। ये प्रेम का फल तो इसमें ही छिपा है। प्रेम स्वयं अपना फल है। तुम्हारी पूजा प्रेम शून्य रही, नहीं तो तुम ये सोचते ही नहीं कि हाथ कुछ ना लगा। पूजा लग गई, नाचे गाए मग्न हुए, सब मिल गया, आकाश टूट पड़ा। फल की आकांक्षा लोभ से पैदा होती और पूजा लोभ से पैदा नहीं हो सकती, इसलिए फलाकांक्षी कभी पूजा नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। फलाकांक्षी चूकता ही चला जाता है, उसकी फलाकांक्षा ही बाधा है। वो हमेशा पूछता है इससे मिलेगा क्या। जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अगर तुमने पूछा कि फल क्या होगा कि तुम चूके। गुलाब खिला, सुंदर है बहुत, सुबह की अभी ताजी ताजी बूंदें उस पर चमकती हैं सूरज की किरणों में, और तुम पूछने लगे हां ठीक है सुंदर है मगर सौंदर्य का लाभ क्या है, तो तुम चूके, वंचित रहे काव्य से। वह जो काव्य झर रहा था गुलाब के उस फूल के आसपास अदृश्य, वे जो अदृश्य परिलोक से उतर रही थी सुंदरियां फूल की पखरियों पर, तुम उनके प्रति अंधे हो गए। तुमने पूछा लाभ क्या है। चांद निकला, सुंदर था बहुत, और तुमने पूछा लाभ क्या है। तुम दुकान छोड़ते ही नहीं, तुम मंदिर में भी दुकान नहीं छोड़ते। तुम पूछते हो हाथ कुछ भी ना आया। इससे इतना ही पता चलता है कि पूजा का तुम्हें पता ही ना चला हाथ कैसे कुछ आता है। पूजा मिली तो सब मिला। भक्तों ने तो भक्ति में इतना पा लिया, फिर बैकुंठ भी नहीं मांगा, कहा संभालो अपना बैकुंठ, हमें तो तुम्हारा पूजन तुम्हारा अर्चन काफी, हम तो तुम्हारे गीत गाते रहे इतना पर्याप्त, यही हमारा स्वर्ग। कहते हो तीर्थ व्रत यात्रा कर चुका हूं पर निष्फल, वह फल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। क्या मैं ऐसे ही अकारत जीऊंगा, अकारत ही मर जाऊंगा? ये फलाकांक्षा रही तो अकारत ही जियोगे, अकारत ही मरोगे। बहुत बार जिए हो बहुत बार मरे हो, ये कोई तुम्हारी नई आदत नहीं, ये पुरानी तुम्हारी परंपरा है, सदियों सदियों पुरानी, यही तुम्हारा अतीत है। लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है, बात बदली जा सकती है, बिगड़ी बात बन सकती है। एक तार टूट टूट जाए तो बीन को नवीन तार चाहिए। था जिन्हें रखा बहुत संवार कर, था जिन्हें रखा बहुत दुलार कर, रंग एक बार के उतर गए, फूल एक बार के बिखर गए, बाग चुप रहा समय निहार कर, किंतु कह उठी पिकी पुकार कर, एक बहार रूठ जाए रूठ रूठ जाए, तो बाग को नई बहार चाहिए। एक तार टूट टूट जाए तो बीन को नवीन तार चाहिए। ताज आग का संवारता रहा, पंथ भोर का निहारता रहा, किंतु दीप की लगन बिखर गई, स्नेह चुक गया, शिखा सहर गई। दीप त्रस्त हो लगा गुहारने, किंतु मृत्यु का लगी पुकारने। एक स्नेह को सरीत जाए तो स्नेह की नवीन धार चाहिए। एक तार टूट टूट जाए तो बीन को नवीन तार चाहिए। उड़ चला विहंग तरण लिए हुए, प्यार का अकंप प्रण लिए हुए, किंतु क्रुद्ध आंधियां मचल गईं, तरण बिखेर नील को कुचल गईं। लुट गया विहंग, छा गई निशा, किंतु फिर लगी पुकारने उषा। एक नील टूट फूट जाए तो डाल को नया सिंगार चाहिए। एक तार टूट टूट जाए तो बीन को नवीन तार चाहिए। प्राण स्वप्न लोक में रमे रहे और नींद में नयन लगे रहे, पर अजान ही हृदय धड़क उठा, कांपते हुए खुले सजल पलक। नींद ही रही न स्वप्न ही रहा, किंतु तप्त अश्रुधार ने कहा, एक स्वप्न टूट टूट जाए तो आंख को नया खुमार चाहिए। एक तार टूट टूट जाए तो बीन को नवीन तार चाहिए। मैं तुम्हें सदा दुलारता रहा, प्राण में बसा संवारता रहा, किंतु एक दिन कहार आ गए, पालकी उठी तुम्हें ले गए। हर शपथ ज्वलित अंगार हो गई, जिंदगी असह भार हो गई। जब हृदय लगा चिता समारने, व्योम के नखत लगे पुकारने, एक मीत सांप छोड़ जाए तो प्यार की नई पुकार चाहिए। एक तार टूट टूट जाए तो दीन को नवीन तार चाहिए। नई पूजा सीखो, नया अर्चन सीखो, नई थाप दो ढोलक पर। ये तार टूट गया, इस तार को फिर जमाओ। भूल पूजा की न थी, भूल तुम्हारी थी। भूल आंगन की न थी, तुम्हें नाचना ही ना आया, और तुम समझे कि आंगन टेढ़ा है। अभी सब समझ सकता है, अभी फिर सब ठीक हो सकता है। अभी कुछ बिगड़ नहीं गया, कभी कुछ बिगड़ नहीं गया। जब भी घर लौट आए तभी समझना कि सबेरा है, देर अबेर सही। अब तुम पुराने पूजा के ढांचे को छोड़ो, यहां हम यही तो कर रहे हैं आनंदास, पूजा का ढांचा पैदा नहीं कर रहे, पूजा की एक भाव तरंग। पूजा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं, सिर्फ पूजा का एक रंग और उन्मुक्तता और स्वतंत्रता, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कंठ से अपने ढंग से गा लेने की सुविधा। और फिर मैं ये भी नहीं कहता कि ईश्वर को मानो, ईश्वर को मानने की कोई जरूरत ही नहीं, मानोगे तो कैसे मान पाओगे। लेकिन चांतारे बहुत हैं नाचने के लिए, ईश्वर को बीच में लाओ भी क्यों। वृक्षों की हरियाली बहुत है नाचने के लिए, आकाश से उतरती सूरज की रोशनी बहुत है। ईश्वर को बीच में लाओ ही मत, मंदिरों में जाओ क्यों, सृष्टि काफी है। इससे सुंदर मंदिर और बन भी कैसे पाएंगे। नाचना सीखो, गुनगुनाना सीखो। एक खुमार टूट गया, टूट जाने दो, आंख को नया खुमार चाहिए। यहां हम खुमारी ही बांट रहे, यह एक मधुशाला है, यहां थोड़ा पियो। और अगर तुम चांदारों के नीचे नाच सको और सागर की उत्ताल तरंगों के साथ उन्मत्त हो सको और दक्षों के साथ हवाओं में डोल सको, तुम परमात्मा को पालोगे, क्योंकि परमात्मा यही कहीं छिपा है, इसी हरियाली में, इन्हीं फूलों में, इन्हीं तारों में, इन्हीं चट्टानों की ओट में। जीसस ने कहा है, उठाओ पत्थर को और उसके नीचे छुपा तुम मुझे पाओगे, तोड़ो इस लकड़ी को और उसके भीतर बसा तुम मुझे पाओगे। लेकिन हम औपचारिक हैं, हम बैठते हैं पूजा का थाल सजा के, एक मूर्ति बनाकर, धूप दीप बालकर, संस्कृत का पाठ करते, सब व्यर्थ हो जाता। संस्कृत तुम्हारे हृदय से भी नहीं आती, उसका अर्थ भी तुम्हें मालूम नहीं। कि मुसलमान है तो अरबी में पाठ कर रहा है, उसे कुछ पता भी नहीं कि वो क्या कह रहा है। पराई भाषा बोल रहे, मुर्दा भाषा बोल रहे, अपनी भाषा में बोलो। और हुए होंगे बड़े बड़े पंडित, और उन्होंने बड़े सुंदर प्रार्थना के पद रचे होंगे, मगर वे उधार हैं। तुम तुतलाओ सही, मगर अपनी ही भाषा में तुम अपनी ही बात कहो। कम से कम परमात्मा के सामने तो तुम अपनी ही बात कहो। देखते हो, मां के सामने उसका बेटा तुतलाता भी है तो खुश हो जाती। कम से कम तुतलाहट उसकी अपनी तो है, अपने हृदय से आती। और किसी विश्वास के आधार पर मत करो ऐसा, नहीं तो तुम विश्वास के पीछे खोजते रहोगे। फल नहीं मिला, अब तक फल नहीं मिला, फल कब मिलेगा? तुम्हारी नजर फल पे अटकी रहेगी और तुम चूकते चले जाओगे। मैं तुम्हें कहता हूं कि जीवन एक उत्सव है, नास्तिक हो चलेगा, कोई अड़चन नहीं है। जीवन के उत्सव को मानने में तो कोई अड़चन नहीं, उत्सव तो हो ही रहा है, पक्षी तो गा ही रहे, यही प्रार्थना है, वृक्ष तो मौन में खड़े ही है, यही ध्यान है। जीवन के महोत्सव को थोड़ा समझो, जीवन में रस विभोर हो, छोड़ो सैद्धांतिक बातें, और एक दिन तुम पाओगे इसी रस विभोरता से, इसी जीवन के उत्सव में रंगते पकते परमात्मा भी चला आया। तब पैदा होती है श्रद्धा, तब पैदा होती आस्था, वह विश्वास नहीं है, और श्रद्धा मुक्तिदायी है, और श्रद्धा अमृत का स्वाद दे जाती है। दूसरा प्रश्न, संसार में सब क्षणभंगुर है, इसलिए पकड़े तो क्या पकड़े? रामकीर्ति, क्षणभंगुर में ही शाश्वत छिपा है। क्षणभंगुर को छोड़ा कि शाश्वत से भी चूके, जैसे लहर लहर में सागर छिपा है, तुम लहर लहर से बच गए, सागर से भी बच जाओगे। नाव छोड़ने के पहले अगर नाविक पूछे कि सागर कहां है, ये तो छोटी मोटी लहरें हैं, इनमें कैसे नाव छोड़ूं? लहरों में कोई नाव छोड़ता, सागर कहां है? ये उथली छोटी छोटी लहरें, इनका भरोसा भी क्या? अभी हैं, अभी गई, क्षण भर तो टिकती नहीं, इनमें नाव छोड़ दूं? ये तो खतरा हो जाएगा, ये तो जोखिम की बात है। सागर कहां है? मैं तो सागर में नाव छोड़ूंगा। तो फिर तुम बैठे रहना नाव रखे किनारे पर, तुम भी सड़ोगे, नाव भी सड़ेगी। लहर के भीतर सागर ही है, लहर सागर ही है, छोड़ो नाव, लहर के नीचे ही सागर भी मिल जाएगा। क्षणभंगुर कहते संसार की निंदा मत करो, क्षण उस शाश्वत की अभिव्यक्ति है। वही बोला है वही झलका है, वही झांका है। तुम देखो जरा आंख खोलकर चारों तरफ, कितना सौंदर्य है, कितना छंद है, और तुम पिटी पिटाई बातें लिए बैठे। तुम्हें कोई भी कहता रहा है कि संसार क्षणभंगुर है, तुमने सीख लिया तोते की तरह रट ली ये बात, संसार क्षणभंगुर है। क्षण क्या है? क्षण शाश्वत की लहर है, शाश्वत में उठी तरंग है, तो क्षण में ही छिपा है शाश्वत, समय में ही छिपा है नित्य। भागो मत, डूबो, डुबकी मार दो क्षण में। लेकिन तुम्हें उल्टी बातें समझाई गई हैं, और इतने दिन तक समझाई गई कि तुम्हें ठीक ठीक लगने लगी। बहुत बार दोहराने से झूठ भी सच मालूम होने लगते हैं, इसलिए तो विज्ञापनदाता झूठों को दोहराए चले जाते हैं। दोहराते रहो, इसकी फिक्र ही नहीं करते कि कोई मानता है कि नहीं मानता, लोग अपने आप मान ही लेते। तुम तो दोहराते रहो कि लक्स टॉयलेट साबुन सबसे अच्छी साबुन, न कोई प्रमाण देने की जरूरत है। हजारों साबुन हैं, मगर तुम दोहराते रहो, इंगित देते रहो, इशारे देते रहो। जहां से भी आदमी गुजरे, अखबार खोले तो लक्स टॉयलेट साबुन दिखाई पड़े, रेडियो सुने तो लक्स टॉयलेट साबुन दिखाई पड़े, टेलीविजन पर जाए तो लक्स टॉयलेट साबुन दिखाई पड़े, रास्ते से गुजरे तो बड़े बड़े बोर्ड लगे। बस उसके मन पर गुंजाते रहो लक्स टॉयलेट साबुन, लक्स टॉयलेट साबुन। एक दिन जब वो जाएगा खरीदने बाजार साबुन, और दुकानदार पूछेगा क्या, वो कहेगा लक्स टॉयलेट साबुन, और सोचेगा कि मैं खुद ही सोच के कह रहा हूं, ये सोचा हुआ नहीं, ये केवल संस्कार ही थे। इसी तरह तुम धर्म भी दोहरा रहे हो, तुम्हारे धर्म में और तुम्हारे लक्स टॉयलेट साबुन में जरा भी भेद नहीं। इसी तरह तुम प्रार्थना पूजा भी कर रहे हो, इसी तरह तुम सिद्धांत की बड़ी बड़ी ऊंची बातें भी छान रहे हो, मगर सब सुनी बकवास है, तुम्हारा अपना कोई भी अनुभव नहीं। अब तुम कहते हो संसार में सब क्षणभंगुर है, जानते हो, क्षण में उतरे हो, क्षण में डुबकी मारी, क्षण के पीछे झांका, कौन खड़ा है पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे तो वही राम है। जरा टटोलो तो नहीं, मगर मुर्दा बातें सदियों से दोहराई गई तुम्हें पकड़ लेती, फिर तुम उन पर कभी पुनर्विचार नहीं करते। और जब एक दफे मान लिया कि संसार क्षणभंगुर है, तो तत्क्षण लोभी चित्त कहता है तो क्षणभंगुर में क्या सार, इसलिए पकड़े तो क्या पकड़े, पकड़ने की जरूरत क्या है, उसने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम उसे क्या पकड़ोगे, तुम उसके हाथ में हो, उसने तुम्हें जन्माया, वही तुम्हें जिलाता है, वही तुम्हें एक दिन उठा ले जाएगा, तुम उसे क्या पकड़ोगे, तुम्हें उसे पकड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम पृथ्वी को तो नहीं पकड़ते, डरते तो नहीं कि कहीं पकड़ा नहीं पृथ्वी को तो छूट ना जाए, नहीं तो इतना अनंत आकाश है, गिर पड़े कहीं। छोटे छोटे बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते कि जमीन गोल है तो लोग गिर क्यों नहीं पड़ते, कम से कम अमेरिका के लोग तो गिर ही जाए, बिल्कुल नीचे हैं, जमीन गोल है। और अमेरिका के बच्चे पूछते हैं कि कम से कम भारत के लोग तो गिर जाए, मगर कोई गिरता नहीं, कोई जमीन को पकड़े नहीं। जमीन ने तुम्हें पकड़ा है, उसके गुरुत्वाकर्षण ने तुम्हें पकड़ा है, और जैसे जमीन का अदृश्य गुरुत्वाकर्षण है, इससे भी ज्यादा अदृश्य परमात्मा का गुरुत्वाकर्षण है, वह तुम्हें पकड़े हुए, तुम्हें उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। और उसकी पकड़ ऐसी पकड़ है कि तुम्हें बांधती भी नहीं, तुम्हारे आसपास जंजीरें भी नहीं खड़ी करती। उसकी पकड़ ऐसी पकड़ है कि तुम्हें पूरी स्वतंत्रता भी दी हुई है, तुम्हें छोड़ भी नहीं दिया है और तुम्हें कारागृह में बंद भी नहीं कर दिया है। जैसे मां एक आंख से देखती रहती बच्चा कहां खेल रहा है, छोड़ा भी हुआ है लेकिन एकदम छोड़ भी नहीं दिया है, एक आंख उसका पीछा कर रही, हजार काम में लगी रहती लेकिन हृदय में उसे स्मरण बना रहता है कि बच्चा बाहर खेल रहा है, कहीं दूर ना निकल जाए, कहीं सड़क पर ना पहुंच जाए, कहीं गाड़ी घोड़े की चपेट में ना आ जाए। मनुष्य स्वतंत्र है और फिर भी कोई उसकी सुरक्षा कर रहा है प्रतिपल। वे हाथ तुम्हें सहारा दे रहे हैं, तुम्हें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मगर लोभी मन कहता है यहां तो सब क्षणभंगुर है। और मजा तुम देखना कि जिनको तुम समझते हो तुम्हारे साधु संत, वे तुमसे ज्यादा लोभी है। उनका कारण क्या है संसार छोड़ देने का? यही कारण है, संसार क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर से वो कहते हैं क्या सार पकड़ने में, हम तो पकड़ेंगे तो उसको पकड़ेंगे जो कभी छूटे ना, तो तुम में और उनमें फर्क क्या हुआ? तुम जरा कम लोभी हो, वो जरा ज्यादा लोभी। तुम कहते हो हमारा क्षणभंगुर से ही चल जाएगा, वो कहते हैं हमारा इससे नहीं चलेगा, हमें तो शाश्वत चाहिए, हमें तो जब तक पक्का भरोसा ना हो जाए कि जो हमने पकड़ा वो सदा हमारे साथ रहेगा, तब तक हम जोखिम उठाने वाले नहीं। इससे तो संसारी ही कम लोभी मालूम पड़ते। तुम्हारे तथाकथित संत महालोभी, उनकी इच्छा वैकुंठ की है, वे भी चाहते हैं कि सुंदरी स्त्रियां उन्हें मिलें, लेकिन अप्सराएं, उर्वशी, मेनका, अप्सराएं जो कभी वृद्ध नहीं होती और जो कभी बीमार नहीं होती और जो सदा जवान रहती, वे भी चाहते हैं इन्हीं सारी वासनाओं की तृप्ति जो तुम चाहते हो, मगर वे चाहते हैं एक स्थिर आधार पर जो सदा होती रहे। वे कल्प वृक्ष की तलाश कर रहे हैं जिसके नीचे बैठकर जो चाहेंगे तब चाहेंगे, जब चाहेंगे उसी वक्त पूरा हो जाएगा। इनको तुम संत कहते हो? जरा इनके भीतर छिपी हुई वासना तो देखो, ये स्वर्ग में भी इरादे क्या रखते। मैंने सुना एक संत मरे, संत जैसे संत होते, संयोग की बात दूसरे तीसरे दिन उनका शिष्य भी मर गया। शिष्य तो चला स्वर्ग की तरफ बड़े पक्के भरोसे से कि गुरुदेव के मिलन का मौका आ रहा, गुरु से मिलन होगा। सोचने लगा रास्ते में कि गुरु को कैसे बड़े से बड़े कल्प वृक्ष के नीचे बैठने का स्थान मिला होगा, थे भी बड़े तपस्वी, सब छोड़ छाड़ के दिन रात राम 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 जपा करते थे। अब राम ने दिया होगा फल भी पूरा, सबसे सुंदर स्त्री उर्वशी मिली होगी, दबा रही होगी पैर, पहुंचा शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे गुरुदेव। पहले तो लंगोटी भी पहने रहते थे, अब तो नंग धड़ंग थे, लंगोटी भी गई, वो तो सब संसार की चीजें नहीं थी, संसार में रह गई। नंगे आते हैं आदमी, नंगे जाते हैं, नंग धड़ंग बैठे थे कल्प वृक्ष के नीचे, खुश हो गया शिष्य। और इतना ही नहीं, एक युवती आलिंगन कर रही थी, बड़ी सुंदर युवती होगी जरूर उर्वशी, एकदम साष्टांग दंडवत की गुरु के चरणों में गिरती हो, कहा गुरुदेव धन्य, मैं तो पहले से जानता था कि ऐसे ही सुख आपको मिलेंगे, पुण्य भी तो किए थे, व्रत भी तो किए थे, नियम उपवास तीर्थ यात्रा सब तो किया था, मिलना ही था, ये तो आपका हक था। गुरुदेव ने कहा तू चुप रहे नालायक, तुझमें अभी भी अकल नहीं आई, तू पहले जैसी नालायक की बातें कर रहा है। शिष्य ने कहा कि कैसे चुप रहूं, अपनी आंख से देख रहा हूं कि आपको आपके पुण्यों का पुरस्कार मिल रहा है। गुरु ने कहा चुप रहे, ये मेरे पुण्यों का पुरस्कार नहीं मिल रहा, ये इस स्त्री को इसके पापों का दंड मिल रहा है। ये स्त्री मेरे पुण्यों का पुरस्कार नहीं है, मैं इसके पापों का दंड हूं। तू चुप रह, बीच में मत बोल। ये स्त्री को सताने का उपाय किया गया है। अब संत के साथ पकड़ा दो किसी स्त्री को, इससे ज्यादा और सताने का क्या उपाय हो सकता है। मगर गुरु नाराज है कि तू चुप रह, ना समझ, क्रोधित है।